learners, today I'll explain atomic structure, that is Parmanu Sanrachana. So I'll discuss in both Hindi as well as English. As you are aware, and you have already studied in lesson 2, that molecules and atoms are the particles, or you can say are the constituents of matter. जैसा कि आपने पार्ट 2 में पढ़ा है, परमाणु और परमाणुओं का द्रव्यों के घटक के रूप में अध्ययन किया गया है. यू हैव ऑल्सो लर्न दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. आपने ये भी पढ़ा है कि परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण होता है. लेसन 3, आई थिंक यू आर हैव ऑलरेडी स्टडीड द केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड how the chemical reactions are going on. You have already learned in that lesson 3. तो lesson 3 में, अध्याय 3 में आपने रासायनिक अभिक्रियाओं, उनके विभिन्न प्रकार तथा उनके प्रदर्शित करने के तरीकों को सीखा है. As you are aware, as according to Dalton theory, the atoms of different elements are not similar. And orientation of atoms takes place of the materials during a chemical reaction. जैसा कि आप जानते हैं कि डाल्टन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं का पुनर्गठन होता है. But today you are aware that atom is indivisible and atom cannot be divided. लेकिन आप ये जानते हैं परमाणु अविभाज्य नहीं है, जैसा कि डाल्टन की परिकल्पना में सही नहीं है. आपने पढ़ा होगा डाल्टन ने बताया था कि परमाणु कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट हेयर यू कैन सिंपली से इट कैन बी डिवाइडेड, अविभाज्य नहीं है. जैसे कि परमाणु की संरचना क्या है, अब यू हैव स्टडी हेयर, और हम यहाँ आपको डिफरेंट जितने भी आपके देखेंगे डिफरेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन के बारे में आपको बताएंगे हम. इस इकाई के आरंभ में परमाणु के कणों की इलेक्ट्रॉन प्रोटोन आदि के खोज के विषय में अध्ययन करेंगे. इसके बाद इस खोज के आधार पर परमाणु के विभिन्न प्रस्तावित मॉडल के बारे में सीखेंगे. हम ये चर्चा करेंगे कि परमाणु संरचना के विभिन्न मॉडल कैसे विकसित किए गए. यू आर अवेयर दैट दे आर डिफरेंट मॉडल्स लाइक थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, देन बोर्स मॉडल. वील डिस्कस ऑल दीज मॉडल इन दिस, एंड वी ऑल्सो डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन दिस चैप्टर. एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस हेयर दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन ए एटम, एंड दैट विल बी हेल्पफुल to explain the valency of the elements. So we have to explain here this different charge ions present in matter, the discovery of electron and proton. We'll also discuss the Dalton's atomic theory. We'll also discuss the Rutherford model. We'll also discuss Bohr's model in the न्यूट्रॉन एंड ऑल्सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के. वी विल ऑल्सो डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एटसेट्रा. देन आई ऑलरेडी टोल्ड यू विल ऑल्सो डिस्कस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो ऑल दीज टॉपिक्स विल बी डिस्कस हियर. नाउ फर्स्ट आई हैव टू टेक दैट चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. एटम में उपस्थित आवेशित कणों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा. एज यू आर अवेयर इन लेसन 2 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इन 1883 इट हैज बीन प्रपोज्ड बाय डाल्टन दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड इट इज नॉट इंडिविजिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड रादर. जैसा कि 1803 में प्रस्तावित इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा और अविभाज्य घटक माना जाता है, डाल्टन का सिद्धांत उस समय प्रचलित द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्तर अनुपात नियम और गुणित अनुपात नियम की व्याख्या कर सकता है. सो वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मास कंजर्वेशन, देन कॉन्स्टेंट प्रपोर्शंस रूल एंड मल्टीपल प्रपोर्शन रूल. हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत की ओर कुछ प्रयोगों के पता चला परमाणु न तो सबसे छोटा है और न ही अविभाज्य कण है, जैसा कि डाल्टन ने कहा था। लेकिन अराउंड 1900 सेंचुरी इट हैज बीन फाउंड दैट एटम इज नाइदर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर नॉर इट इज अविभाज्य, दैट इज कैन नॉट बी इंडिविजिबल। यह भी सूक्ष्म कणों से बना होता है। इन कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ द स्मॉलेस्ट, दिस इज यू कैन से पार्टिकल्स, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होते कण हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। नाउ आई डिस्कस वन बाय वन अबाउट दीज पार्टिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। In 1885, William Crookes has performed a series of the experiments in a cathode tube. He has taken a metal vacant tube and heat it. After heating, he studies their behavior. A cathode kiran एक आर्थिक रूप से खाली ट्यूब होती है जिसमें धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। हवा रहित ट्यूब को खाली ट्यूब कहते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को कैथोड जबकि धनावेशित इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। सो एज आई हैव टोल्ड यू द कैथोड किरण नली ट्यूब इज पार्सली एम्प्टी, दिट हैज टू मेटल इलेक्ट्रोड, दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर जॉइंट टूगेदर विद ए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह का एक कैथोड किरण नली को आप यू कैन सी हेयर। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट वेन High voltage is discharged cathode tube, the electrode के ऊपर जब यह देखा गया है कि जब बहुत तेज वोल्टेज पर विद्युत विसर्जन कैथोड किरण ट्यूब में इलेक्ट्रोड के ऊपर पारित किया जाता है तब कैथोड कणों की एक धारा का उत्पादन होता है। यह कण कैथोड से एनोड की ओर चलते हुए दिखाई गए हैं और इनको कैथोड कण कहा जाता है। वाह्य चुंबक या विद्युत के क्षेत्र में के अभाव में यह किरणें सीधी रेखा में यात्रा करती हैं। तो इफ़ देर इज नो एक्सटर्नल आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिसिटी एरिया देन दे मूव डायरेक्ट स्ट्रेट इन द स्ट्रेट लाइन। इन 1897 जे थॉमसन ए इंग्लिश रादर कैन से दैट इज फिजिसिस्ट सोच that these current, that these rays are negatively charged. In 1897 में एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक ने जैसे सर जे थॉमसन ने दिखाया कि यह किरणें ऋणावेशित कणों की धारा से बने थे। यह निष्कर्ष प्रयोगात्मक अनुभव के आधार पर किया गया था जब प्रयोग एक बाहरी विद्युत की क्षेत्र की उपस्थिति में किया गया था। कैथोड किरणों के गुण निम्नलिखित होते हैं। नाउ आई डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। नंबर वन, कैथोड रेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में लाइन में चलती हैं। कैथोड किरणों के घटक कणों का द्रव्यमान है और उनमें गतिक ऊर्जा होती है। कैथोड रेज हैज काइनेटिक एनर्जी एंड दीज आर द कॉन्स्टेंट पार्टिकल ऑफ मैटर। कैथोड किरणों के घटक का द्रव्यमान नगण होता है। They have negligible weight, but they move with a fast speed. कैथोड किरणों के घटक का द्रव्यमान नगण होता है मगर यह तेज गति से चलते हैं। कैथोड किरणों के घटक ऋणावेशित होते हैं। As I have already told you that cathode rays are negatively charged, and if you apply external either magnetic field or electricity field, then they move from one side to other side. कैथोड किरणों के घटक ऋणावेश होते हैं और आप बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनावेश प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। उत्पन्न हुई कैथोड किरणों की प्रकृति, कैथोड किरण ट्यूब में भरी हुई गैस और कैथोड एनोड बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं थी। यह आपने बताया कि जो कैथोड रेज प्रोड्यूस इन दिस वे डू नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैथोड ट्यूब, द गैस विच इज फिल्ड इन द कैथोड ट्यूब एंड द मेटल फॉर विच एनोड इज यूज्ड, उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। प्रत्येक स्थिति में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ई बाई एम एक समान पाया गया है। तो आप कहीं से कैथोड रे, इफ़ यू प्रोड्यूस कैथोड रे फ्रॉम एनी सोर्स, ई बाई एम दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक मास रेशियो विल बी द सेम। कैथोड किरणों के इन किरणों को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, लेटर ऑन दिस कैथोड रेज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट कैथोड रेज के जो कैथोड रेज प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज आर सेम, आइदर दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम एनी गैस और फ्रॉम एनी मेटल आयन। जो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द कैथोड रेज आर सिमिलर प्रॉपर्टीज, आइदर यू हैव प्रिपेयर फ्रॉम एनी मेटल और एनी गैस। कैथोड किरणों के इन कणों को बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। यह भी देखा गया है कि कैथोड किरणों के गुण एक जैसे होते हैं, चाहे कैथोड ट्यूब में कोई भी गैस ली जाए या कैथोड किसी भी धातु का बना हो। इससे थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अर्थ यह है कि परमाणु अविभाज्य है, जैसा कि डाल्टन और दूसरे द्वारा माना जाता है। सही नहीं है, दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत आंशिक रूप से विफल रहे हैं। इस निष्कर्ष को यह सवाल उठा, यदि परमाणु विभाज्य था तो उसके घटक क्या थे। आज यह पाया गया है कि परमाणुओं का गठन बहुत से सूक्ष्म कणों से हुआ है। परमाणु को बनाने वाले इन सूक्ष्म कणों की अब परमाणु कहते हैं। आपने यू हैव ऑलरेडी लर्न इलेक्ट्रॉन परमाणु के घटकों में से एक है। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द अदर कॉन्स्टेंट ऑफ द एटम। नाउ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज बीन फाउंड दैट सिंस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, सो टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज वी शुड हैव पॉजिटिव चार्ज। सो देयरफोर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय गोल्डस्मिथ। इलेक्ट्रॉनिक खोज से काफ़ी पहले गोल्डस्मिथ में एक छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में एक अल्प दाब पर हवा भरकर एक प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया कि जब विसर्जन नली में उच्च विद्युत विसर्जन किया जाता है तो छिद्रित कैथोड के पीछे धीमी लाल दीप्ति उत्पन्न होती है। यह चमक एक दूसरी प्रकार की किरणों के कारण थी जो किरणों की विपरीत दिशा में बह रही थी, जो कैथोड रेज और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। इन किरणों को एनोड किरण या धन किरण का नाम दिया गया है। यह किरणें धनावेश होती हैं, इनको कैनार किरणें भी कहते हैं क्योंकि ये छिद्रित कैथोड के छिद्र अथवा छिद्रित कैथोड के कैनाल से निकलकर जाती हैं। कैनाल किरणों के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है। अगेन आई विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैनाल और कैथोड रेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोडिस कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली एनोड रेज और कैनाल रेज आर पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहला ये है दे आर पॉजिटिव चार्ज। कैथोड किरणों की तरह धन किरण की भी सीधी रेखाओं में चलती हैं, दे ऑल्सो मूव इन दी स्ट्रेट लाइन। धन किरणों के घटक कणों से द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा होती है। देखिए हमारा डिफरेंस था, इसमें गतिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी देयर बट दे ऑल्सो हैव वेट, मास इज ऑल्सो देयर, जो कि कैथोड किरणों में नहीं था। कैथोड किरण में आपको बताया था कैथोड रेज डोंट हैव एनी मास बट दे मूव फास्ट बट दे हैव काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, बट इन एनोड रेज दे हैव मास बट एंड ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी। धन किरणों के घटक कण धनावेश होते हैं और देन एज आई टोल्ड यू दैट कैथोड रेज हैज नो मास वेयर एज एनोड रेज हैज मास, देयरफॉर एनोड रेज आर हैवियर एज कंपेयर टू कैथोड रेज। एनोड किरणों से घटकों के प्रकृति और प्रकार प्रसरण देखिए, यहाँ इज अ डिफरेंस। कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द गैस फिल्ड द ट्यूब एज वेल एज द मेटल यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड, वेयर एज एनोड रेज इज आर डिपेंडेंट on the nature of gas filling the tube as well as the metal ion. एनोड किरणों की घटक कणों की प्रकृति और प्रकार विसर्जन नली में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं. एनोड किरणों की उत्पत्ति को कैथोड किरणें तथा निर्बाध नली में मौजूद गैस के आपस में क्रिया करने के संदर्भ में समझा जा सकता है. तो नाउ यू आई विल एक्सप्लेन. कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन नली में मौजूद गैस के उदासीन परमाणु के साथ टकरा कर उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं. इससे धनावेशित कण शेष रह जाता है जो कैथोड की तरफ चलता है. कैथोड नली में हाइड्रोजन गैसें निहित हों तो कैनाल नली से प्राप्त होने वाले कण का भार न्यूनतम और उनके आवेश व सहती का अनुपात ई बाई एम अधिकतम होता है. रदरफोर्ड ने दिखाया कि यह कण हाइड्रोजन आयन के समान है. इन कणों को प्रोटोन का नाम दिया गया. सभी तत्वों के परमाणु में प्रोटॉन उपस्थित हैं. इस प्रकार हम देखते हैं कि थॉमसन और गोल्डस्मिथ के द्वारा किए गए प्रयोग से पता चलता है कि परमाणु में दो प्रकार के कण मौजूद हैं जिनके विद्युत आवेश एक दूसरे के विपरीत हैं और सभी परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं. इन दो आवेशित कणों के कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक तटस्थ कण न्यूट्रॉन की भी खोज हुई. इसके विषय में मैं आपको बाद में बताता हूँ. नाउ आई विल डिस्कस द मॉडल ऑफ एटम. यू हैव ऑलरेडी स्टीट इन पार्ट 5.1 दैट द एटम इज डिविजिबल और तीन सूचकों से बना है. नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ विल यू एक्सप्लेन इट और ऑन व्हाट बेसिस यू कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमसन मेडल विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. थॉमसन मेडल आल्सो कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल और पोटिंग मॉडल. एक्चुअली इफ यू आर अवेयर मे आई वाज जस्ट आई विल गिव यू इन दैट सेल. इफ यू सीन ए वाटरमेलन इफ यू कट द वाटरमेलन यू विल फाइंड दे आर ए स्मॉल सीड्स एंड रेड कलर. सो स्मॉल सीड्स आर नेम गिवन इलेक्ट्रॉन एंड पल्प जो है आपको पल्प का नाम दिया गया इनको अपना हिसाब से दैट इज द पार्ट ऑफ द एटम. पार्ट दो में आपने सीखा कि सभी परमाणु पदार्थ परमाणु के बने हैं और सभी परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं. परमाणु के घटक के रूप में इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में एक बराबर मात्रा का धनावेश भी होना चाहिए. इस आधार पर उन्होंने परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार परमाणु एक बड़ा गोलाकार क्षेत्र जिसमें एक समान धनावेश है. तो मेरा होता है पल्प जो होता है उसको लिया होता है धनावेश और ऋणावेशित सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर बिखरे हुए हैं. इस मॉडल को प्लग पुडिंग का नाम भी दिया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लग हैं और धनावेशित पुडिंग में मौजूद हैं. यह मॉडल तरबूज के रूप में भी मेरा होता है वाटरमेलन के रूप समान है जिसमें गूदा जो होता है दैट इज धनावेश दैट इज यू कैन सी बी से धनावेश के रूप में और इलेक्ट्रॉन बीजों के रूप में है. हालांकि आप ध्यान दें तरबूज में बीज की संख्या अधिक होती है और परमाणु में इतने अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. तो इस मॉडल को नकार दिया गया. देन आफ्टर दैट रदरफोर्ड मॉडल केम इन टू एग्जिस्टेंस. अगेन आई विल गिव यू द नटशेल व्हाट रदरफोर्ड एक्सप्लेन. एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड एक्चुअली ही हैज डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम. Actually, he has performed an experiment on gold foil, thin gold foil. He bombarded alpha particles on a thin gold plate. He found that some rays are gauge state if they are far away from the middle, this is center of the atom. Some rebound in a small angle. But some rebound or came back. So actually on the basis of this, because alpha particles are positively charged, so he has explained since alpha particles are coming back, so there is other thing present in the atom at the center. So later he has given the name of nucleus. So I'll explain now in Hindi. रदरफोर्ड और उसके सहकर्मी रेडियो धर्मिता के क्षेत्र में काम कर रहे थे। वह अल्फा कणों का पदार्थों के ऊपर प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। अल्फा कणों को हीलियम के परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालकर प्राप्त किया जाता है। वर्ष दैट इज इन 1910 हैस गीजर और अर्नेस्ट मार्शरेन ने अल्फा कणों के प्रसिद्ध प्रकीर्णन प्रयोग का प्रदर्शन किया। दैट इज इसके कारण थॉमसन के मॉडल का खंडन हो गया। नाउ आई एक्सप्लेन इट। इस प्रयोग में एक रेडियोधर्मी स्रोत से निकली अल्फा किरणों की धारा को स्वर्ण धातु की दैट इज 0.00004 सेंटीमीटर्स पतली नली पन्नी के माध्यम से पारित किया गया और पन्नी के पीछे दीप्त सील प्लेट पर गिरने से उत्पन्न चमक की जांच की। थॉमसन मॉडल के अनुसार यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने की परत के पार सीधे जाएंगे और फोटोग्राफ प्लेट जो कि परत के पीछे रखी गई है से प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु इस प्रयोग के परिणाम काफ़ी आश्चर्यजनक थे। अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे पारित होते हैं। कुछ अल्फा कण अपने पद से थोड़ा, मैंने आपको बताया था रेट थोड़ा सा, कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। हर 1200-12000 कणों में से एक कण प्रतिक्षेपित होता है, मतलब रिबाउंड हो जाता है। तो यू विल फाइंड दैट देयर समथिंग पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। अल्फा कणों के विक्षेपण प्रयोग का परिणाम 1911 में रदरफोर्ड ने समझाया और परमाणु के दूसरे मॉडल का प्रस्ताव दिया। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार, रदरफोर्ड का मॉडल यू विल फाइंड हियर, परमाणु के केंद्र में एक सघन और धनाभिस क्षेत्र होता है जिसमें जिसको नाभिक किया जाता है। एज आई ओनली टोल्ड यू अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज सिंस दीज रेजिज रिबाउंड बैक इट इंडिकेट्स दैट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस सिंस यू विल फाइंड वेरी फ्यू रेजिज केम बैक इट मीन्स देयर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम नेम हैज बीन गिवन न्यूक्लियस। परमाणु का धनाभिस और समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में यू विल ऑल्सो कंसिडर्ड द मास ऑफ द दिस एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नाउ इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाई द रदरफोर्ड दैट लार्ज पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी एंड यू विल फाइंड दैट बहुत ही जिस यू कैन से स्मॉलेस्ट स्पेस इज कंटेन्स दैट इज द इलेक्ट्रॉन। बट दिस मॉडल हैज ऑल्सो बीन रिजेक्टेड। So I have already discussed in Hindi, now I'll explain in English. So I have already told you that Rutherford performed an experiment that is called a scattering experiment actually. He has taken a very thin gold foil and he bombarded the gold foil with the alpha particles. Alpha particles are nothing that the helium particles, 2 nucleotones are equal, or you can say they are positive charged. He has observed that most of the alpha particles passes straight through a gold foil. Very few alpha particles, you can say, they deviate from their path. But some of them comes back. Or you can simply say that around, if you say 12,000 alpha particles are bombarded in the gold foil, one came back. He was surprised to see that if we have Thomson model was correct, then all the rays goes through directly pass through the gold foil. On the base of this, he explained that since positive charge rays are coming back, it means that there should be some particle present in the center of the atom. The atom is not empty, like Thomson told you. So he has explained there is no doubt, most of the part is empty, but at the center there is some part which is positively charged. And later on the name has been given nucleus. So Rutherford discovered the nucleus, and nucleus is positively charged. And in you can simply say, as according to Rutherford, he explained that the center of the nucleus there is a positively charged condensed positive charge field and the condensed area we can nucleus also this all the this you can simply say पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड यू कैन से मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी और उसके जो चारों तरफ है यू विल फाइंड दैट नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो एज अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अल्फा कण परमाणु के इलेक्ट्रॉन के छेद से गुजरते हैं, ये बिना विक्षेपित हुए सीधे रेखा में पारित हो जाते हैं. केवल वह कण जो धनाभिक धनाभिक के पास जाते हैं अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं, परंतु कम अल्फा कण नाभिक से टकराने के बाद प्रतिक्षेपित होते हैं. तो मैंने आपको बताया कि चूँकि जो आपने पढ़ा होगा कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स आर रिपेल दिस इज सेम चार्ज आर रिपेल टू अदर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जब टकराएंगे तो दे विल कम बैक. तो उन्होंने कहा जो पॉजिटिव हैं जब न्यूक्लियस के पास जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं. अपने मॉडल के आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिक के आकार का अनुमान लगाया. उसके अनुमान अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कम 1,00,000 गुना छोटी होती है. हम नाभिक के आकार की कल्पना निम्न तुलना से कर सकते हैं. यदि परमाणु का आकार क्रिकेट के मैदान में सदृश है तो नाभिक का आकार मैदान के बीच एक मक्खी के बराबर होता है. तो यू कैन सिंपली से इट मींस न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलेस्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया आई हैव एक्सप्लेन अप टू नाउ वी कैन एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल इफ द थॉम्सन मॉडल वॉज करेक्ट, अगर थॉम्सन मॉडल सही होता तो अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रक्षेपण किस प्रकार होता. तो क्लियर है अगर वो सही होता देन अल्फा कण जो अल्फा रेज पास स्ट्रेट थ्रू द एटम. एंड द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट हु हैज गिवन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यू विल से रदरफोर्ड एंड देन एक्सप्लेन. नाउ क्वेश्चन अराइज द लॉट ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस अराउंड हाउ विल यू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. अब क्वेश्चन ये आया रदरफोर्ड एक्सप्लेन दैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट द सेंटर ऑफ द एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. नाउ इफ दिस इज ट्रू देन व्हाट विल हैपन्स. देखिए सिंपल आई गिव यू देन एग्जाम्पल. इफ यू टेक रेस इन ए दिस फील्ड आफ्टर सम टाइम से 1 hour और हाफ एन आवर यू विल नॉट बी एबल टू मूव फास्ट देन अल्टीमेटली यू विल सिट डाउन. सिमिलरली द क्वेश्चन राइज द इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द न्यू इलेक्ट्रॉन्स. So electron, all the electron will fall on the nucleus. Then nucleus, this is atom will not be stable. Similarly, when electron move continuously, they lose energy. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर खेल के मैदान में आप दौड़ रहे हैं तो आप एनर्जी लूज कर रहे हैं. आप 1 hour या 2 hours के बाद आप लगेगा यू विल सेट डाउन, आप बैठ जाएंगे आराम से. तो सिमिलरली का इलेक्ट्रॉन अगर इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली दे विल एमिट एनर्जी एंड एट वन स्टेज दे विल नॉट बी एबल टू लूज एनर्जी देन व्हाट विल हैपन्स. They will fall on the nucleus. So Rutherford could not explain the stability of the nucleus. That was the main drawback. Now I'll explain this in Hindi. Rutherford model के अनुसार ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्षाओं के धनावेश नाभिक के चारों ओर घूमते हैं. हालांकि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार अगर एक आवेशित कण दूसरे आवेशित कण की तेज परिक्रमा में करता है तो लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा खो देता है. ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन की गति कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्पिल शैली में परिक्रमा करेगा और अंत में नाभिक में गिर पड़ेगा. तो जैसा मैंने बताया था कि दैट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस. दूसरे शब्दों में परमाणु स्थायी नहीं होगा. मैंने आपको बताया द एटम विल नॉट बी स्टेबल और इस तरह पतन नहीं होता है. अतः रदरफोर्ड मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या करने में असमर्थ है. दैट वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, हाउ द एटम विल बी स्टेबल. रदरफोर्ड मॉडल के जिस तरह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस और किस प्रकार वितरित हैं के बारे में कुछ नहीं कहता. द सेकेंड ड्रॉबैक इज दैट रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड around the nucleus. This is also the second drawback. So you should be clear, the examiner generally asks, this is most important part, what is Rutherford model and what are its drawback. So this sometimes you'll get 4 marks question or 6 marks question from this topic, because you have to explain the Rutherford model in detail. Then after that you should explain the what are the drawbacks. So two drawback aap dhyan rakhiye. First, he could not explain stability of the atom. Secondly, he could not explain how the electrons are arranged around the nucleus, how the electrons are distributed in different cells around the nucleus. So Rutherford could not explain these things. Then after that, we'll also find, now he also not explain परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के बीच संबंधों की व्याख्या करने में असमर्थता थी. इस समस्या के बाद में चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन तीसरे परमाणु कण का गठन. तो चैडविक हैज डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन. आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. परमाणु की स्थिरता की समस्या और परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण, नील बोर द्वारा प्रस्तावित परमाणु. नाउ नेक्स्ट मॉडल आई विल एक्सप्लेन द नील बोर मॉडल. देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज Neil Bohr model were applicable nowadays also. Only the reason was that Neil Bohr replaces circular path with, you can say, elliptical part. ये आपको लगा. और दूसरा इन्होंने बताया था, I'll give you again a brief. जो main चीज़ ये थी Neil Bohr model की, electrons are revolved, there is no doubt. But they only move from one energy level to another level when excited. जो energy lose करते हैं, either they move from low energy to high energy or high energy to low energy, then they will lose energy only. Otherwise, they will have constant energy. So that was the main. तो जैसा उसमें बताया था Rutherford में, they continuously lose energy. But in the case of Bohr's metal, they do not continuously lose the energy. They will lose energy only when either they are excited, they go to lower oxygen, lower state to higher state, or higher state to lower state only. In 1930, Neil Bohr Rutherford ke chhatr ne, that was the Rutherford students. Neil Bohr was the Rutherford students. Rutherford model ki kamiyon ko dur karne ke liye ek model ka prastav rakha. Bohr model ko uske dwara prastavit do avdharana ke sandarbh mein samjha ja sakta hai. There are two postulates of, so sometimes again exam ask, what are the postulates of Bohr Neil Bohr model? तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए, व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज. इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के वृत्तीय कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जैसा कि हमारे सौर प्रणाली में विभिन्न ग्रह निश्चित प्रक्षेप चक्र में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं. ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूम सकते हैं. इन रास्तों को वृत्तीय कक्षा या ऊर्जा का स्तर कहा जाता है. इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया था, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लूजिंग एनर्जी, बट दे लूज एनर्जी ओनली व्हेन दे चेंज देयर स्टेट. इन निश्चित कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं. इस स्थिर अवस्था की सहायसी अवधारणा ने रदरफोर्ड मॉडल में स्थिरता की कमी का सामना कर इस समस्या का समापन कर दिया है. तो पहला काम तो उसने किया, दैट इज द स्टेबल आपके होते हैं कुछ ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनमें जब घूमते हैं तो कोई एनर्जी लूज नहीं करेंगे, बट व्हेन दे रिवॉल्व दे गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, दे एमिट और दे लूज दी एनर्जी. लेटर ऑन इट हैज बीन रियलाइज्ड, बाद में यह महसूस किया गया कि बोर के द्वारा प्रस्तावित परिपथ कक्षा की अवधारणा पर्याप्त नहीं थी, और यह निश्चित ऊर्जा के साथ ऊर्जा कोष में संशोधित किया गया. एक वृत्तीय कक्षा दो आयामी है, एक कोष के तीन आयामी क्षेत्र हैं. निश्चित ऊर्जा वाले कोषों को अक्षरों KLMN आदि के द्वारा या घन पूर्णांक 1, 2, 3 आदि के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं. कोषों की ऊर्जा की संख्या की N में 7 वृद्धि होती है. N=1 इसका मतलब है सबसे नीचे का स्तर होगा, लोएस्ट स्टेट. देन इसके अलावा प्रत्येक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2N² को समायोजित किया जाता है. यह N कोष की क्रम संख्या है. इस प्रकार पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि दूसरे कोष में 8. इसी प्रकार आप देखेंगे, देखिए तो इसको हम कहते हैं 2N², अगर पहला केस N=1 तो N का स्क्वायर हो गया 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 स्क्वायर। तो सिमिलरली 3 का अगर है तो आपके कितने हो सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 3 3 9 दूनी 18, सिमिलरली 4 है, 4 चौक 16 दूनी 32, तो आपको इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं n इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल 3 में 18 इलेक्ट्रॉन एंड n इक्वल टू 4 में 32 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अवशोषण या उत्सर्जन के बाद द्वारा अपना कोष या ऊर्जा का स्तर बदल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब ये चेंज करेंगे स्टेट तभी ये ऊर्जा अंदर निकलेगी या एब्जॉर्ब करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का एक फोटोन, हाँ दैट इज इक्वल टू एच न्यू, ये शुड बी क्लियर। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, देखिए सिंपल चीज है, एक क्वांटा, दैट इज एच न्यू इज नोन एज क्वांटा, तो दे विल एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। अगर ये लोअर स्टेट से हायर में जाएंगे दे विल एब्जॉर्ब। सिमिलरली तो हम कहते हैं ई एफ इज इक्वल टू ई आई, मतलब यू कैन से ई आई, ई आई माइनस ई एफ, ई आई मीन्स इनिशियल एनर्जी एंड माइनस फाइनल एनर्जी, तो दैट विल इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू, तो ई एफ माइनस ई आई यू कैन फाइंड आउट दैट इज द एच न्यू। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षक बदलकर उच्च ऊर्जा में जाता है, प्राइम स्तर से अंतिम निचले स्तर में आता है, तो ऊर्जा का एक फोटोन निकलता है। तो आपको ये बताना है कि एनर्जी जो निकलती है वो क्वांटा ग्रुप में निकलती है, कोई अमाउंट ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा निकल जाए, और इसको हम कह देते हैं ई एफ माइनस ई आई। एनर्जी फाइनल स्टेट में कितनी थी और इनिशियल स्टेट में कितनी थी, उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्वांटा, दैट इज एच न्यू एंड नी इक्वल टू सी एफ ऑन लैम्डा, सो यू कैन कैलकुलेट दिस वन एंड एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट। Now on the basis of this you can really explain, again as I have told you the question can be asked that what are the shortcomings of Rutherford model, this I have already told you that two shortcomings you have to explain, this one stability of maximum then you think if exam ask 2 marks question then you give 2 points only, that Rutherford could not explain the stability of the atom and secondly he could not explain how electrons are distributed around the nucleus. So these are the two shortcomings. Now, as I already told you, that Bohr model explains the stability as well as how the electrons are arranged around the nucleus. So both the shortcomings have been solved by the Bohr's model. Now I'll discuss, as I've told you, that there is a electron, negative charge, proton, positive charge. Ab yahan question aata hai, agar electron, proton dono hi hain, उनके बीच में कोई पार्टिकल नहीं है, व्हाट विल हैपन? अपोजिट चार्ज व्हाट विल हैपन, विल अट्रैक्ट टू इच अदर, देन प्रोटॉन न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन टुगेदर। यू आर वेरी अवेयर दैट अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स विल ऑलवेज अट्रैक्ट टू इच अदर, नेगेटिव अगर सेम चार्ज होगा देन दे रिपेल्ड, यू आर वेरी वेल अवेयर। तो अभी आया कि अगर मान लीजिए एटम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, then how the atoms is stable, so means there should some things should present between the electron and proton so that they should not combine together, are you clear? So therefore Chadwick has discovered the neutron, neutron is the neutral. You are very aware about the Rutherford shortcomings about the atomic structures, आपको ज्ञात होगा कि हम रदरफोर्ड मॉडल की विफलता के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने उल्लेख किया था कि रदरफोर्ड मॉडल परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के बीच संबंधों की व्याख्या करने में असमर्थ था। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार हीलियम परमाणु का भार 2 प्रोटॉन युक्त, हाइड्रोजन परमाणु का भार 1 प्रोटॉन युक्त से दोगुना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अपेक्षा की गई थी क्योंकि यह बहुत हल्का है, हालांकि हीलियम परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का वास्तविक अनुपात 4:1 है, अतः सुझाव दिया गया कि नाभिक में एक और अब परमाणु कण होना चाहिए जिसका द्रव्यमान तो हो मगर वह विद्युत का उदासीन हो। इस तरह कण की खोज 1932 में चैडविक ने की, यह विद्युत उदासीन है और इसे न्यूट्रॉन का नाम दिया गया है। हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, तो इस शुड बी क्लियर एक्सेप्ट हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल द न्यूक्लियस। एक न्यूट्रॉन का एन के रूप में प्रतिनिधित्व किया होता है और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा अधिक पाया जाता है, सो इट इज हैवियर देन प्रोटॉन।
अतः यदि हीलियम परमाणु के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मौजूद हैं तो हीलियम हाइड्रोजन के द्रव्यमान के अनुपात में 4:1 को समझा जा सकता है। नाउ आई डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नाउ दिस इज यू कैन सिंपली से फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इनके जो आपके ये हैं दैट इज सिंबल्स, इलेक्ट्रॉन को हम ई से छोटी ई से स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से। नाउ यू विल वांट मास इन किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन इज 9.109389 × 10⁻³¹। प्रोटोन 1.672623 × 10⁻²⁷। एंड न्यूट्रॉन इज 1.67492810⁻³¹। वास्तविक जो इनका कूलम में होता है आपका, दिस इज यू कैन सी से चार्ज, चार्ज इन कूलम। इलेक्ट्रॉन −1.602177 × 10⁻¹⁹। प्रोटोन 1.602177 × 10⁻¹⁹। बस उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। तो उसको −1 कह देते हैं, उसको +1 कह देते हैं, उसको हम जीरो कह देते हैं। नाउ आई डिस्कस द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, दैट इज दी। सो विल फाइंड हेयर एज यू आर अवेयर। देखिए अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हाउ विल यू कैलकुलेट। मैं पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू द नटशेल, देन यू कैन एक्सप्लेन। नाउ व्हेन वी एक्सप्लेन मास ऑफ द एटम, वी हैव टू टेक द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो उसमें जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे उसका मास हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहते हैं लिथियम, लिथियम में जो है लिथियम का एटम नंबर है 3। अब इसमें यू शुड बी क्लियर द प्रोटॉन विल बी 3, then how will you explain that then neutron will also be 3, the mass will be 6. So this is or atomic number, jo atomic number will be equal to number of electrons or number of proton. So the jo jitne number of proton honge utna hi uska atomic number hoga, dhyan rakhiye aap. So ispe numerical problem can be asked by the examiner. First I'll give you the numerical problem. Suppose exam may ask you that x a z, a is the atomic number एंड जेड इज दी एटोमिक मास। अब आप बंदे बताइए कि देखिए अब ए जो होगा एटोमिक जो दिस इज नंबर ऑफ प्रोटोन, तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड व्हाट इज द जेड हियर, जेड इज द प्रोटोनों की संख्या होती है। ए मैं ले रहा हूँ आपको द्रव्यमान संख्या, प्रोटोन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दैट इज जेड प्लस एन। तो हम कहते हैं अगर जो द्रव्यमान अगर निकालना है तो जेड प्लस एन, मतलब मैं सिंपल देता हूँ, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दी मास, मास यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन। अगर इफ यू निकल एटोमिक नंबर, एटोमिक नंबर विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन्स। न्यूमेरिकल कैन बी आस्क रिलेटेड टू दिस वन। समटाइम्स एग्जाम में आस्क यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि लिथियम्स एटोमिक नंबर इज 3 एंड एटोमिक मास इज 6, वाट विल बी दी, how will be how many number of neutrons are present in there, then you can easily say atomic number is given which is equal to proton, number of proton. So you know the number of proton, you know the atomic mass, so you can simply say atomic mass will be equal to the number of proton plus number of neutrons. You don't know number of neutrons, so aap rakhiye atomic mass is 6, number of protons is 3 plus n, the n will be 6 − 3, so you can say number of neutron will also be 3. Or similarly, sometime exam will give you the number of neutrons and protons. You have to calculate the mass. So this type of question can be asked. Now I'll give you in Hindi. जैसा कि I've already discussed that परमाणु के नाभिक में धनाभिक कण प्रोटोन और उदासीन कण न्यूट्रॉन संचित होते हैं। मैंने बताया परमाणु, मैंने आपको पहले बताया था कि इन द एटोमिक मास इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, दे आर नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, देयर इज अ डिफरेंस। समटाइम्स एग्जामिनर में आस्क विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ओनली दो लिखने हैं आपको। इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ओनली। एंड सो इन द न्यूक्लियस ओनली टू पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, दैट इज द प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसका जेड के रूप में हम अभी प्रतीक से दर्शाते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन प्रकृति के होते हैं। अतः आपको याद होगा कि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से अलग हैं। अब हम कह सकते हैं कि यह अंतर तत्व के परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या में अंतर के कारण होते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु अलग अलग हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु को नाभिक में एक प्रोटॉन है, जबकि हीलियम परमाणु के नाभिक में दो प्रोटॉन हैं। उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 1 और 2 हैं। आपने रदरफोर्ड मॉडल में सीखा है कि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। यह नाभिक में मौजूद दो भारी कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति कारण है। इन कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से चिन्हित करते हैं और यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के बराबर होते हैं। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। जैसा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ लिथियम, तो यू कैन टेक एन एग्जांपल, तो यू शुड रिमेंबर दिस फार्मूला। दिस द्रव्यमान संख्या दैट इज अटोमिक मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दिस फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर। बाई यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट, यू कैन आस्क एनी न्यूमेरिकल कैन बी आस्क बाई द एग्जामिनर। जैसे मैंने आपको कहा है कैल्शियम एग्जाम्पल पूछता है, कैल्शियम में कहता है एटोम नंबर इज 20, नंबर ऑफ प्रोटोन इज एटोमिक मास इज 40, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप क्लियर निकाल सकते हैं 40 इज इक्वल टू 20 प्लस n विल बी 40 माइनस 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 20। सो दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैन बी आस्क बाय द एग्जामिनर। सो आप लिखिए मैटोम, कोई भी जब आपको लिखना है बाईं तरफ आप एलिमेंट का सिंबल लिखिए, उसके बाईं तरफ ऊपर लिखिए एटोमिक मास, नीचे लिखिए एटोमिक नंबर, तो आपको दोनों चीज़ें पता जाएंगी। तो एटोमिक नंबर बराबर, जो एटोमिक नंबर में प्रोटोन आप कह सकते हो या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज अराइजेज दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशंस ऑफ एटोमिक ऑर्बिट्स। एटोमिक ऑर्बिट्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। तो वैसे तो आई हैव टोल्ड यू दैट के एलेवन सेल हम क्यों कहते हैं, वी फॉलो द फॉर्मूला 2n² वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स। जैसे आपसे कहा जाए 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इफ नंबर ऑफ दिस 3 अगर मान लेते हैं हम 2, तो 2 × 4 × 8, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। पहले में 4 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम इनका आप कर सकते हैं। अगर पाँचवा आप लेंगे तो 50 इलेक्ट्रॉन तक पहुँच जाएंगे। सो दिस इज द वे बाई विच यू कैन ईजिली अरेंज द इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। सो यू कैन ईजिली अरेंज इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं या कोषों में अक्षर के एल एम एन द्वारा या पूर्ण संख्या 1, 2, 3 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कक्षाओं की व्यवस्था ऊर्जा के बढ़ते क्रम से की जाती है। एम कोष की ऊर्जा एल कोष की ऊर्जा से अधिक होती है और एल कोष की ऊर्जा के ओर, तो के से सबसे कम ऊर्जा होगी, फिर के एल की होगी, फिर एम की होगी, एन की ऊर्जा सबसे कम होगी। तो पहले के में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर एल में जाएंगे, फिर एम में जाएंगे, फिर एन में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पहले एन में चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। एक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को सूत्र 2n² से गणना करते हैं, जहां एन कोष की क्रम संख्या है। अतः इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो विभिन्न कक्षाओं में हो सकती है, के में 2, एल में 8, एम में 18, एन लास्ट में 32 कैन बी का। तो के एलिमेंट में आप कह सकते हो 2, 8, 18, 32, तो सिंपल है 2n² आप निकाल सकते हो। कक्षाओं का निर्धारण ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार होता है। तो मैंने जैसा बताया कि यू शुड बी क्लियर दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर द के सेल, देन एल सेल, देन एम, देन एन। उल्टा नहीं हो सकता कि पहले इलेक्ट्रॉन आप एन में जाएं, तो दैट इज दी, तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम एनर्जी के की होगी, उसके बाद एल की होगी, उसके बाद एम की होगी और सबसे ज़्यादा एन की होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में तब तक समायोजित नहीं होते तब तक भीतरी कक्षा पूरी तरह न भर जाए। तो यू शुड ऑल्सो क्लियर दैट फर्स्ट पहले आपको के में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये नहीं हो सकता कि एक के में भर दें और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप एल में भेज दें। तो पहले के को पूरा करेंगे, अगर तीन इलेक्ट्रॉन है दो इलेक्ट्रॉन आपके पहले उसमें जाएंगे के में, अगर तीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा एल में। सिमिलरली अगर आपको आठ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले दो इलेक्ट्रॉन के में, छः इलेक्ट्रॉन आपके जाएंगे इसमें, और उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचते हैं एक्स्ट्रा हो जाएंगे अगले सेल में। किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में उनके इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो नाउ यू कैन से हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले कक्षा में भर जाता है। इस तरह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एक, दैट इज के। अगले तत्व के हीलियम में दो परमाणु इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते हैं दो, तो इनको हम भरते हैं दो, आठ, अठारह, बत्तीस, इस तरह से भरते हैं। पहले में दो, अब तीसरा का इलेक्ट्रॉन है तो जाएगा अगले इसमें दो और एक हो जाएगा, लिथियम में दो और एक हो जाएगा। तो आपके यहाँ 20 एलिमेंट्स हैं। लिथियम के बाद में आपका आ जाता है कार्बन, कार्बन में दो दो हो जाएंगे, फिर कार्बन के बाद आपका आ जाता है नाइट्रोजन, दो और तीन हो जाएंगे। इस तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः, दो सात, दो आठ, आठ के बाद फिर अगले में चला जाएगा, दो आठ एक, दो आठ दो, दो आठ तीन, इस तरह से। नेक्स्ट क्या हो, सो यू शुड ऑल्सो बी एक्सप्लेन द वैलेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, वी कैन ईजिली एक्सप्लेन द वैलेंसी, संयोजकता जिसे हम कहते हैं, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। तो जो इसमें दो तरह की वैलेंसी हम कहते हैं, यू शुड बी क्लियर दैट मैक्सिमम हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन साल जो पहले एलिमेंट्स हैं दे शो पॉजिटिव, तो ये मेल इसमें ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ऑक्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन हम गेन करें या इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें। तो बाय यूजिंग दिस वी कैन एक्सप्लेन दी ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स।